तो अच्छा, इसी तरह बाज़ुकात ऐसा होता है कि आप सो रहे थे, बहुत गहरी नींद में थे, और आपकी जब आंख खुली तो सूरज निकलने के करीब है या डूबने के करीब है, यानी फजर की नमाज आखिरी उसमें है, या ये कि असर का आपको जब याद आया तो सूरज डूबने के करीब है, तो फिर उस वक्त आप क्या करेंगे? तो ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स सूरज डूबने से पहले असर की एक रकत पा ले, वो अपनी नमाज पूरी करे, यानी इसकी नमाज अदा हुई या कजा, और जो सूरज निकलने से पहले फजर की एक रकत पा ले तो वो भी अपनी नमाज जो है वो पूरी करे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर एक रकत भी हम पढ़ सकते हैं और एक ही रकत ही पढ़ लें और फिर वो गुरूब हो गया, बाद में आप दूसरी रकत पूरी कर लें, जितनी भी पढ़ सकते हैं, नमाज की अहमियत का इससे भी अंदाजा होता है। बाज का भी होता है ना कि अब देर होगी तो अब क्या करें, और देर होने पर लोग परवाह नहीं करते ना, तो क्या पता चलता है कि अगर किसी को देर हो गई है, भूल गया है, गहरी नींद में था, और जितनी पढ़ सकता है, 2 मिनट रहते हैं, 3 मिनट रहते हैं, तो उतनी ही वो पढ़ ले, है ना। इस ये रूटीन तो नहीं हो सकती ना, जोर मगरिब की हो, मगरिब की होने वाली है, असर की नमाज आपकी जा रही है और उधर से फजर की जा रही है, सूरज निकलने के करीब है, तो अगर एक रकत भी मिल रही है, एक सजदा भी मिल रहा है, थोड़ी सी भी हमें मिल रही है, तो उतनी जो है उसको अदा कर लेना चाहिए। क्यों? ताकि जितनी हो सकती है उतनी जो है वो अदा की जाए और उसको जो है वो कजा ना किया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज अदा करना भूल जाए या उस वक्त सोया हुआ हो तो उसका कफारा यह है कि याद आते ही उसको जो है वो अदा कर ले। तो ये सारी अहदीस जो है हमें क्या बताती हैं कि नमाज को वक्त की पाबंदी के साथ अदा करना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मे फरवा ने पूछा कि कौन सा अमल अफजल है, आपने फरमाया नमाज अव्वल वक्त पर अदा करना, और अल्लाह की खुशनुदी नमाज को अव्वल वक्त अदा करने में है, और आखिर वक्त में अदा करना अल्लाह की ताला की तरफ से माफी है। ये भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, यानी आखिरी वक्त में नमाज अदा तो हो जाती है लेकिन अल्लाह ताला फिर माफ कर देते हैं गलती को। तो इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, अली 3 बातों में ताखीर ना करना, नमाज में जब उसका वक्त आ जाए, जनाजा की तदफीन में जब तू वहां मौजूद हो, तीसरा यह है कि रंडवा मर्द या रंडवी औरत, मतलब मर्द और औरत जिनके जौज नहीं है, उनका निकाह में जबकि उसका बर मिल रहा हो तो उसमें देर नहीं करनी चाहिए। तो असल चीज क्या है, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबं मौकूता, ये नमाज जो है ये दरहकीकत वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है, और फर्ज किस पर की गई है, मोमिनीना मोमिनों पर, ईमान लाने वाले नमाज को ताखीर से नहीं पढ़ेंगे, देर नहीं करेंगे, उनको एहसास रहेगा कि नमाज वक्त की पाबंदी के साथ जो है वो अदा करनी है। तो हमें जरूर अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में नमाज में कितने रेगुलर हैं और कितने वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, और कितने में जो है हम ये कहते हैं कि बहुत से ऐसे उजर हम रखते हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है। अब जंग से बढ़कर तो उजर नहीं हो सकता था ना, है ना, जंग से बढ़कर तो उजर नहीं हो सकता, जब तब नमाज को माफ नहीं किया, सफर को में नमाज को माफ नहीं किया, तो आम दिनों में जो आम मेरे और आपके हालात है उसमें कैसे नमाज माफ हो सकती है। नापाकी की हालत है तो पाक हो जाइए जबकि आपकी नापाकी की कैफियत खत्म हो गई है। बाज़ वक़्त क्या है कि लोगों का हैज या निफास खत्म हो जाता है लेकिन वो नहाते नहीं है, मसरूफ है, अभी काम कर रहे हैं, अभी दावत है, तो नहीं जो है वो जब यूं ही आपको अंदाजा हो कि अब आप जो है आपका आपका ये उजर खत्म हो चुका है, तो फौरन नहाना चाहिए और नमाज के लिए खड़े होना चाहिए और चेक करते रहना चाहिए अपने आप को, जो है वो खामखा जो है वो ऐसी कैफियत में नहीं रखना चाहिए कि जो है वो यानी उजर बनाकर बहाना बनाकर नमाज जो है उसको कजा किया जाए। फिर इसी तरह अपने नींद के औकात जो है, उन लोग कहते हैं कि अलार्म लगाया था लेकिन अलार्म बंद करके सो गए, मैं ये कहती हूँ अलार्म लगाने की जरूरत नहीं होती, जहन में अलार्म लगना चाहिए, दिल में दिमाग में अलार्म लगना चाहिए कि मुझे नमाज पढ़नी है, और आप अपने दिल में तय करके सोएं, आप इसका जायजा लीजिएगा, आप अपने दिल में तय करके सोएं ना कि मैंने आधे घंटे में उठना है या 1 घंटे में उठना है या 3 घंटे में उठना है, आपकी आंख खुलेगी, आप ढीठ बनकर ना उठे तो अलग बात है, आप जरूर आपकी आंख खुलेगी और आप टाइम देखें तो आपको लगेगा कि हाँ अच्छा ये टाइम है, ये तहज्जुद के लिए मुझे उठना था या फजर के लिए उठना है या वैसे भी, और अगर आपने जहाज लेना हो, आपने जो है वो ट्रेन पकड़नी हो, आपने बच्चों को लेना छोड़ना होता है, तो फिर तो आप बहुत एक्टिव होते हैं, आप सारी चीजों को काटते और छोड़ते चले जाते हैं। तो जब अल्लाह से बात का वक्त है, अल्लाह से मुलाकात का वक्त है, तो हम फिर क्यों जो है वो इतने काहिल, इतने सुस्त, इतने बेगाना और इतने अजनबी बन जाएं कि अल्लाह से मुलाकात के वक्त जो है हम नमाजों को कजा करने लगे। तो अल्लाह से मोहब्बत का अंदाजा इससे हो सकता है कि मेरी नजर में नमाजों की कितनी अहमियत है। नवाफिल तो नसीबों वालों को मिलते हैं ना, तहज्जुद तो उसको मिलती है जिसकी किस्मत जागती है, लेकिन फराइज जो है तो उसमें तो तसाहल और तगाफुल नहीं बरतना चाहिए। इसमें ये कोई उजर काबिले कबूल नहीं है कि कपड़े पाक नहीं है, मैं जल्दी में हूं, कुकिंग में मसरूफ थी, दावत थी, बच्चे छोटे छोटे हैं, प्रेगनेंसी है। आखिरी दिन भी क्यों ना हो, आखिरी वक्त भी क्यों ना हो, जब तक के जो है वो मतलब खून आने यानी दर्द भी हो रही है तो नमाज फर्ज है, जब तक के खून आने ना लग जाए और सर जो है वो बाहर ना निकल आए। तो बहरहाल असल बात क्या है कि नमाज जो है उसको हर हाल में जो है ना उसको अदा करना है, कोई उजर नहीं है, कोई बहाना नहीं है। जब हशर में पूछा जाएगा था पास खजाना कुव्वत का वो किस मकसद पे सरफ किया, उस वक्त कहोगी क्या बोलो, हर उजर को कांटे पर तोलो। और हमारी नजर में नमाज की जितनी अहमियत होगी उसी के मुताबिक हमारे बच्चों की नजर में फिर नमाज की अहमियत होगी और हमारे दोस्तों की नजर में होगी, है ना। हम अपने फोनों को कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, बातों को बंद कर सकते हैं, अपनी जो दावतें हमारी लंबी चौड़ी होती हैं और उसकी वजह से नमाजें हमारी कजा हो रही होती हैं तो हम उनको मुख्तसिर कर सकते हैं, हम उनका जायजा ले सकते हैं। जरूर वक्त की ऑडिटिंग करनी चाहिए कि नमाजें कजा होने की वजह दावतें हैं, हमारे उजर हैं, बहाने हैं, दोस्तियां हैं, टीवी का ज्यादा इस्तेमाल है, फोन का ज्यादा इस्तेमाल है, ऐसी बैठी रहती हूँ, क्या वजूहात है। नमाज कजा नहीं होनी चाहिए और वक्त की पाबंदी के साथ, नमाज वक्त की पाबंदी से खाती है। फिर फरमाया वला तहिनू फी इब्तिगाइल कौम, और तुम जो है वो सुस्त ना पड़ो इस ग्रोह के ताकुब में। तो ये किस ग्रोह का जिक्र हो रहा है, काफरों के ग्रोह का, जो उस वक्त इस्लाम की दावत के कयाम की राह में रुकावट बनकर खड़ा था, है ना। काफिर जो है तुम उनको उनके ताकुब में कमी मत करो, सुस्ती मत दिखाओ। इन तकूनु तालमूना फइन्नहुम यालमूना कमा तालमून, अगर तुम्हें जो है तुम तकलीफ उठा रहे हो यानी उनके ताकुब में और अपने बचाव के लिए तुम्हें मुश्किल हो रही है, अलम दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, फइन्नहुम यालमूना, उन्हें भी तो दुख हो रहा है ना। गज़वाए बदर में कितने काफिर मारे गए थे, 70, है ना, 70 जो थे वो कत्ल हुए और कैदी कितने बने, 70 ही। तो गजवाए ओहद में क्या हुआ, हाँ मुसलमान जो थे वो शहीद हो गए, तो उन्होंने तो दुगना जो था ना तकलीफ उठाई ना। तो अगर मुसलमानों को तकलीफ पहुंचती है तो उनको भी तो पहुंचती है ना। और आप देखें कि जो जंगें हुई हैं, बदर देख लें, ओहद देख लें, खंदक को आप ले लें, काफिर कितना लंबा सफर करके मदीना पहुंचे हैं ना, सामान उठाकर, चीजें उठाकर, पर मुसलमान तो मदीना में से ही निकले हैं, मदीना के अंदर या मदीना से थोड़ा करीबी, तो उन्होंने ज्यादा तकलीफ उठाई है। अगर वो कुफर के लिए, अगर वो दुनिया के लिए, अगर वो शैतान के लिए तकलीफ उठा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। इन तकूनु तालमूना, अगर जो है वो तुम तकलीफ उठा रहे हो, तकूनु तालमूना तुम तकलीफ उठा रहे हो, फइन्नहुम यालमूना, तो वो भी तो तकलीफ उठा रहे हैं ना, कमा तालमून, जैसे कि तुम तकलीफ उठा रहे हो। और असल बात क्या है, फतरजून अमीन अल्लाह मा ला यरजून, और तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो जो वो नहीं रखते। फतरजून अमीन अल्लाह मा ला यरजून वकान अल्लाह वलीमन हकीमा, अल्लाह सब कुछ जानता है और वो हकीम और दाना है। अब यहां पर क्या बात बताई जा रही है कि तुम्हें तो ये उम्मीद है कि तुम जो है या तो शहीद होगे, गाजी होगे, तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हो और अल्लाह तुम्हें इसका जो है वो अजर देगा, और तुम जो भी मेहनत करते हो, जो भी मुशक्कत करते हो, तुम्हें तो आखिरत में अजर की उम्मीद है? और काफिरों को तो किसी अजर की उम्मीद नहीं है ना, तुम तो अल्लाह से अजर की उम्मीद रखते हो और उन्हें क्या है, उन्हें तो कोई उम्मीद नहीं है, और फिर भी वो दुनिया के लिए जो है वो उठे हुए हैं और वो लड़ रहे हैं और वो मेहनत कर रहे हैं। तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो दुनिया के लिए तो एक्टिव हो और वो तेज हो और तुम आखिरत के मुसाफिर हो और तुम जो है तुम्हारी तो कामयाबी यकीनी है, उनका तो जो कुछ भी है वो दुनिया के लिए है ना, तो तुम्हारी तो कामयाबी यकीनी है, तो अब क्या है कि तुम ऐसा ना हो कि सुस्ती दिखाओ और तुम मेहनत ना करो और तुम मशक्कत ना करो और तुम कोशिश ना करो। अब तुम वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, तुम जो कुछ भी करोगे अल्लाह उसको खूब जानता है और वो चीज जो है अल्लाह के खूब इल्म में है। तो यहाँ पे इन तमाम जो आयात हैं, नमाज की पाबंदी भी मकसूद है और मुसलमानों की इस्लाह भी मकसूद है, मुसलमानों की तरबियत भी मकसूद है। यानी बात जिहाद की हो, बात हिजरत की हो, बात सफर की हो, बात अमन की हो, बात खौफ की हो, कुछ भी हालात हो, उन तमाम हालात में अल्लाह को याद करना, नमाजों को कायम करना, नमाज बा जमात की अदायगी, ये चीज जो है ये बहुत जरूरी है। और फिर उसको हुसन के साथ, उसको वक्त की पाबंदी के साथ अदा करना जो है ये जरूरी है। तो इसके बाद जो अगली आयात है, आयत नंबर 105 से लेकर 115 तक, ये जो है ये एक खास मौके की मुनासबत से आयात जो है ये नाजिल हुई हैं। इस रुकू में भी और इसके बाद वाले रुकू में एक अहम मामला जो है उस पर बहस की गई है। और वो मामला जो है वो क्या था, आप देखिए, ये जो आयत नंबर 105 में शुरू होता है, इन्ना अनज़लना इलैकल किताब बिलहक्की लितहकुमा बैनन नासि बिमा अराकल्लाह वला तकुन लिलखाइनीन खसीमा वस्तग़फिरिल्लाह इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना अनज़लना इलैकल किताबा, कि बेशक हमने आप पर नाजिल किया है किताब को, बिलहक की हक के साथ। कुरान मजीद क्या है, हक है। और किस लिए आया, ली तहकुमा, यहाँ पे लाम जो है ये लाम इल्लत है, लाम सबबिया है, वजह। एक तो होता है ना अमर हुक्म, यहाँ पे क्या है, वजह के लिए। वजह क्या है, ली तहकुमा बैनन नासी, ताकि आप लोगों के दरमियान जो है इसके जरिए फैसले करें। हकम यानी कुरान के जरिए फैसले करें। बिमा अराक अल्लाह, जो अल्लाह ने आपको दिखाया है। और फिर आप बददियानत लोगों की तरफ से झगड़ने वाले ना बने। वला तकुल लिलखाइनीन खसीमा, और अल्लाह से दरगुजर की दरख्वास्त करते रहो। वस्तगफिरिल्लाह, अल्लाह से इस्तगफार करो। क्यों, बेशक अल्लाह जो है वो बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो असल वजह क्या थी कि मुसलमानों के अंदर आपको पता ही है कि मुनाफिक भी रहते थे, मुनाफिक भी पाए जाते थे, और ऐसे लोग जिनका ईमान जो था वो कमजोर था। और इन आयात का शान नजूल जो है वो कहते हैं कि इस खास वाक्य के मुतालिक है। कहते हैं कि मदीना में एक खानदान था, बनू उबैरिक, उबैरिक, और ये बनू उबैरिक जो था इसके नाम से ये मारूफ था। इनमें एक शख्स का नाम था, कुछ लोग कहते हैं कि इसका नाम था बशीर बिन उबैरिक, और कुछ लोग कहते हैं कि इसका नाम था तामा। यानी दोनों में से एक नाम था, या तो बशीर और या तामा। तो तामा कैसे, तो ए ऐन मीम के बाद हा। तो इसने क्या किया कि जो बशीर बिन उबैरिक या तामा जो था, इसने एक अंसारी के घर से आटे का थैला और एक जिरा चोरी की। और कहते हैं कि हजरत कतादा बिन नौमान के चचा थे रफा, रा फा अलिफ और ऐन और फिर हा, रिफा, इनके घर इन्होंने चोरी की। तिर्मिजी की रवायत है कि ये शख्स दरहकीकत मुनाफिक था, मदीना में रहते हुए सहाबाए कराम की तोहीन भी करता, अशार लिखकर दूसरों के नामों से इसकी अशात किया करता था। और चोरी की सूरत क्या थी कि हिजरत के इब्तदाई जमाना में आम मुसलमान बड़ी गुर्बत की जिंदगी बसर करते थे, और इनकी आम खुराक क्या थी, जौ का आटा या खजूरें या घ्यू का आटा, तो ये बहुत कम मयसर होता था और मदीना में मिलता भी नहीं था। मुल्क शाम से जब आता तो कुछ लोग मेहमानों के लिए या किसी खास जरूरत के लिए खरीद कर रख लेते। हजरत रिफा ने रजी अल्लाह उन्होंने इसी तरह कुछ घ्यू का आटा खरीद कर एक बोरी में अपने लिए रखा, उसमें कुछ असलहा भी रख कर ना एक छोटी सी कोठरी में उसको महफूज कर दिया। ये जो बशीर बिन उबैरिक जो था ये, यानी या तामा या जो भी था ये जो शख्स था, इसने क्या किया, इसको पता चल गया कि इन्होंने इस तरह से आटा और असलहा को छुपाया है ना, तो इसने क्या किया, चोरी करके ये बोरी निकाली। हजरत रिफा जो थे, जब सुबह को उनको ये पता चला तो अपने भतीजे हजरत कतादा के पास आए और चोरी का जिक्र किया। सब ने मिलकर मोहल्ला में तफ्तीश शुरू की। बाज लोगों ने कहा कि आज रात हमने देखा कि बनू उबैर के घर में आग रोशन थी, हमारा ख्याल है कि वहीं वो खाना पकाया गया है। बनू उबैर को जब राज पाश होने की खबर मिली तो क्या हुआ, वो खुद आए और कहा कि ऐसे ही कहने लगे कि ये काम लुबैद बिन सहल का है, यानी ये फलाह ने किया, यानी उसके कबीले के लोग जमा हो गए। होता है ना ऐसे मौके पे, बेटा बेटे के बारे में आए कि उसने पत्थर मारा है, तो माँ कहती नहीं नहीं मेरा बेटा नहीं हो सकता, किसी और ने मारा होगा, है ना, तो घर वाले हमायती बन जाते हैं, इसी तरह खानदान वाले तासुब का इजहार करते हैं। तो अब वो आगे और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं लुबैद बिन सहल हो सकते हैं। हजरत लुबैद को पता चला, मुखलिस मुसलमान थे और बुजुर्ग थे और नेक थे, उन्होंने तलवार उठाई और चले आए और कहा कि चोर जो है, यानी चोरी किसी ने की और चोरी का इल्जाम मेरे सर पर, अब ये तलवार जो है ना ये मेरी म्यान में नहीं जाएगी जब तक कि चोरी की हकीकत खुल ना जाए, यानी अब ये तलवार फैसला करेगी। अब बनू उबैरक जो है उनको अंदाजा हो गया कि इल्जाम इन पर लगाया गया था, तो ये उठकर आ गया, तलवार लेकर सच्चे थे। उन्होंने आहिस्ता से उनको कहा आप फिक्र ना करें, आपका कोई नहीं नाम लेता, ना ही आपका काम हो सकता है। फिर उन्होंने सोचा, बनू उबैरक ने एक यहूदी के जिम्मे पर लगाया और होशियारी के साथ ये किया कि आटे की बोरी को थोड़ा सा फाड़ दिया जिससे आटा गिरता रहा। अब क्या है कि रिफा के मकान से यहूदी के मकान तक इस आटे के आसार पाए गए, यानी उस आटे को, आटे की बोरी को हजरत रिफा के घर से चोरी की गई थी ना, वहां से लेकर यहूदी के घर तक पहुंचाया गया। तो अब जब सुराख जो किया था थोड़ा थोड़ा आटा गिर रहा था, अब कराइन क्या बताने लगे कि आटे की बोरी वहां से उठकर उठाकर वहां तक पहुंचाई गई, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आटा जो था वो गिर रहा था। तो अब क्या है कि जब शोहरत हो गई कि चोरी हो गई या पता चल गया, तो वो जो कबीले के लोग थे और वो बशीर था या तामा जो ये लोग थे, इन्होंने क्या किया कि उस आटे की बोरी को यहूदी के पास बतौर इमानत रखवा दिया। यहूदी को किसी बात का नहीं पता था, तो उसको जाकर कहा कि ये इमानत है तुम्हारे पास। अब चीज वैसे भी वहां पहुंच गई, ठीक है। अब सोचें कि अगर कोई जाहिरी नजर से देखे तो कहेगा कि हाँ चोरी जो है वो यहूदी ने ही की है। अच्छा, अब क्या हुआ कि तहकीक की गई, क्योंकि आटे की बोरी के आसार भी, मतलब वो आटा भी गिर रहा था जो रास्ते में वो बता रहा था, और जब चोर चोरी करता है तो आमतौर पे पता भी नहीं चलता, इस तरह की चीजों पे देखा भी नहीं जाता ना। तो बहरहाल अब क्या है कि यहूदी के पास पहुंचे, वहां पे आटा भी मिल गया, जीरा भी मिल गई, जो भी असलहा था, लेकिन उसने कसम खाकर कहा कि ये तो मुझे उन्होंने दी है रखने के लिए यहूदी ने। तो अब यहां पर क्या है कि जो कुछ भी हालात ऐसे पैदा हुए कि जब ऐसा हो गया तो बात जो थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। इधर हजरत कतादा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत रिफा, उनको ये गुमान में गालिब होने लगा कि ये कार्रवाई बनू उबैरक ने की है। हजरत कतादा कौन थे, ये भतीजे थे हजरत रिफा के, जिनकी चोरी हुई थी ना उनके भतीजे थे। तो उन्होंने अपने भतीजे से मशवरा किया, पूछा कि क्या करूं, इस तरह मेरी मतलब आटा चोरी हो गया। और जाकर हजरत कतादा रजी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह की खिदमत में सारा चोरी का वाकया बताया और ये भी जो तफ्तीश की थी और बनू उबैरक पर जो उनका गुमान गालिब था वो भी बताया। अब बनू उबैरक को पता चल गया, उबैरक को पता चल गया कि रसूलुल्लाह के पास ये बात चली गई है और वो बिला सबूत चोरी हमारे नाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा तो अब ये है कि हालांकि सामान यहूदी के घर से मिला है फिर भी हमारे नाम इल्जाम है। तो रसूलुल्लाह के पास अब बनू उबैरक के लोग गए, कबीले के लोग, और जाकर कहने लगे कि आप इनको रोकिए कि हमारा नाम ना लगाएं, और हम ऐसे कैसे हो सकते हैं और इस तरह की बातें। अब जाहिरी हालात और असार और कराइन से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इसी तरफ रुझान हो गया कि ये काम यहूदी का है, बनू उबैरक पर इल्जाम सही नहीं है। यहां तक के बगवी की रवायत है कि रसूलुल्लाह का इरादा हो गया कि यहूदी पर चोरी की सजा जारी कर दी जाए और इसका हाथ काटा जाए, आपने अनाउंस नहीं किया, आप सोच रहे थे। और हजरत कतादा जब रसूलुल्लाह के पास आए तो आपने फरमाया कि आप बगैर दलील और सबूत के एक मुसलमान घराने पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हजरत कतादा रजी अल्लाह अन्हु इस मामले में बहुत रंजीदा हुए और अफसोस किया कि काश मैं इस मामले में रसूलुल्लाह के सामने कोई बात ना करता। अगर जो मेरा माल भी जाता रहा, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना मुसलमानों को बहुत, मतलब आपकी तकलीफ या आपका कहना मुसलमानों को बहुत गिरा गुजरता था। तो इस तरह हजरत रिफा रजी अल्लाह को जब ये पता चला कि रसूल अल्लाह ने ऐसा फरमाया, तो उन्होंने भी सब्र किया और साथ ही कहा वल्लाहुल मुस्तआन, कि मैंने अल्लाह के सुपुर्द किया अपने मामले को। अभी कुछ वक्त ना गुजरा था कि कुरान करीम में पूरा एक रुकू इसके बारे में नाजिल हो गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाकये की हकीकत मुनकशफ कर दी गई, चोरी खोल दी गई, यहूदी को बरी कर दिया गया। अब बनू उबैर जो थे मजबूर हुए कि अब वो चोरी किया हुआ माल रसूल अल्लाह के सामने पेश करें, क्योंकि वही नाजिल हो गई थी। तो अब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रिफा को वापस बुलाया, उनको सामान दिलाया और उन्होंने वो असलहा तो जिहाद के लिए वक्फ कर दिया। और जो बशीर बिन उबैरक था वो मदीना से भागकर मक्का चला गया, मुशरिकीन के साथ मिल गया और पहले से भी ज्यादा मुनाफिक हो गया। अब वो खुला कुफर करने लगा, और अगर पहले मुसलमान था तो अब मुर्तद हो गया, और इसी हालत में उसकी वफात हो गई। तो यहाँ पे इसी पस मंजर की आयात है, आइए इसको समझते हैं। इन्ना अंजलना इलैकल किताब बिलहक, अल्लाह ताला कहते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने नाजिल किया इस किताब को आपकी तरफ हक के साथ। तो हम कौन हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात। तो अल्लाह तो एक है, तो हम का सीगा क्यों इस्तेमाल किया गया? इज्जत के लिए, फजीलत के लिए, अल्लाह की बड़ाई बयान करने के लिए, ठीक है। ये नहीं है कि जमा है, यानी बाज़ औक़ात ये है कि जैसे बड़े से भी बात ऐसे की जाती है कि उसकी इज्जत के लिए, बड़ाई के लिए। तो अल्लाह ताला जो है यहाँ पर उनके लिए हम का सीगा जो है वो अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है इज्जत के लिए और बड़ाई बयान करने के लिए। दूसरी बात यह है कि हम खुद अपने लिए हमें हम का सीगा वैसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? फला तुज़क्कू अनफुसकुम, कि अपने अपना तज़किया और अपनी बड़ाई और अपने मुंह मियां मिठू नहीं बनना चाहिए। इल्ला ये कि कुछ लोग जो होते हैं, बाज इलाकों में रवाज होता है अपने आप को हम कहना, और दूसरे ज्यादा भी हों तो उनको तुम कहना, है ना। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर कहीं ये रवाज हो, नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि हम बड़ी चीज है। वैसे अगर आदतन कुछ लोग कहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमें इन्ना मल अमालु बिनियात, वरना यह है कि अगर किसी की नीयत यह खराब हो कि अपने आप को फखर, गुरूर, बड़ाई, किबर, अपने आप को बड़ा समझना, तो ये चीज ठीक नहीं है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इस किताब को नाजिल किया है, किताब से यहाँ पे अल किताब क्या मुराद है? कुरान मजीद। इसलिए बिल हक की, हक के साथ। तो कुरान क्या है? हक है। हक क्या करता है? बातिल को के फर्क को वाजे कर देता है ना। रहमान की बात क्या है, उसकी शान क्या है, इस्लाम क्या है, दीन हक क्या है, उसको वाजे करता है। और कुरान मजीद किस लिए आया है? लितहकुमा बैनन नास, ताकि लोगों के दरमियान जो है ये हकम बन जाए। लोगों के की जो झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, मसाइल हैं, परेशानियां हैं, उनका कुरान की रोशनी में फैसला किया जाए। तो कुरान मजीद जो है वो हमारे दिल के अंदर भी जज बनना चाहिए, हमारे जो भी मसाइल हो उनका फैसला कुरान की रोशनी में होना चाहिए, हमारे घरों के झगड़ों का भी, मियां बीवी के झगड़ा हो या वालदैन का और औलाद का, या किसी हमारी सोसाइटी के अंदर झगड़ा है, तो इस्लामिक कोर्ट जो है उसको अंग्रेज के कानून के मुताबिक नहीं फैसला करना, कुरान के मुताबिक फैसला करना है। क्यों कहा? अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि ए प्यारे रसूल, हमने ये किताब तुम्हारी तरफ नाजिल की हक के साथ, ताकि आप इसके साथ लोगों के फैसले करें। लितहकुमा बैनन नास, और कैसे करें? बिमा अराकल्लाह, जैसे कि अल्लाह ने आपको जो है वो दिखा दिया। तो अराकल्लाह जो है इससे मुराद क्या है? कि जैसे अल्लाह ताला ने आप पर वही कर दी, कुरान की नाजिल किया, वही नाजिल की, वो इल्म मार्फत जो आपको अता किया इसके मुताबिक आप फैसले करें। तुम बिमा अराकल्लाह, जो अल्लाह ने आपको दिखा दिया है। वला तकुन लिल खाइनीन खसीमा, और आप जो है बददियानत लोग जो हैं उनकी तरफ से खसीम मत बने। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि आप जिन लोगों ने खयानत की है उनकी तरफ से झगड़ालू मत बने। और आप देख लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनसे क्या गलती हुई थी कि आसार और क्राइम को देखते हुए आप ये समझे कि चोरी जो है वो किसने की है? यहूदी ने की है, हालांकि उसने नहीं की थी, है ना। तो और लग रहा था कि आप जो हैं अब उसके उसके यहूदी के खिलाफ फैसला दे देंगे। और आप ये कहने वाले थे, यानी हम्मत, अभी आप आगे पढ़ेंगे ये, कि आपने सोच लिया था कि उसका हाथ काट दिया जाए, है ना, और जो बशीर है या तामा उसको जो है वो बरी कर दिया जाए। तो अब जो है अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया कि फैसला कुरान के मुताबिक, कुरान को हकम बनाया जाए और जो कुछ अल्लाह ने आपको दिखा दिया है। तो इससे जो है हमें क्या बात पता चलती है, इससे हमें ये बात भी पता चलती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान थे, है ना, और आपसे भी गलती हो सकती है। क्यों? इसलिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, खबरदार मैं एक इंसान ही हूँ और जिस तरह मैं सुनता हूँ उसकी रोशनी में फैसला करता हूँ। मुमकिन है एक शख्स अपनी दलील हुज्जत पेश करने में तेज हो, होशियार हो, और मैं उसकी गुफ्तगू से मुतासिर होकर इसके हक में फैसला कर दूं, अगर हाँ हाँ हालांकि वो हक पर ना हो, और इसी तरह मैं दूसरे मुसलमान का हक उसे दे दूं, तो उसे याद रखना चाहिए कि ये आग का टुकड़ा है, ये इसकी मर्जी है, उसे ले ले या छोड़ दे। ये सही बुखारी की रवायत है, क्योंकि बाज़ का सुनकर सही बात जो है उसका पता नहीं चलता। और बाज लोग जो झूठे होते हैं वो धोखेबाज होते हैं, वो फरेबी होते हैं, जो चोर होते हैं वो चरब जबान भी होते हैं, तो अदालत में या हाकिम वक्त के पास जाकर अपने हक में फैसला जो है करवा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कुरान के मुताबिक जो है अल्लाह ताला ने जो वही की उसके मुताबिक फैसला होगा। तो आम जिंदगी में क्या असूल निकलता है कि जब भी कोई झगड़ा पास आए, जैसे माँ एक सास है, वालदा है, उसके पास झगड़ा झगड़ा आया बेटे का और बहू का, तो अब क्या है कि बेटे की तरफ वैसे ही माँ को थोड़ी नरमी भी होती है ना, तो बहू हो सकता है सच पर भी हो तो उसको तवज्जो ना दी जाए, है ना। तो हक का फैसला करना है, कुरान के मुताबिक करना है, खाफ फरीके मुखालिफ अपना ज्यादा करीबी क्यों ना हो, है ना। दूसरी बात क्या, इसी तरह दो दोस्तों में झगड़ा हो सकता है, और एक दोस्त जो हो सकता है आपका रिश्तेदार भी हो, फिर ये भी हो सकता है दो हमसायों में झगड़ा हो और उसमें आपको जज बना लिया गया, हकम आप हैं, उसमें भी आपके एक हमसाये से ताल्लुकात ज्यादा हैं और दूसरा दूसरे से नाराजगी है, फर्ज करें। तो अब ऐसा नहीं है कि जो नाराजगी है उसकी नाराजगी में उसको उसी के खिलाफ आप फैसला कर दें, नहीं। दो बच्चे हैं, झगड़ा हो गया उनमें, लड़ाई होगी, आप हैं बाहर, दूसरे बच्चे की माँ नहीं है, आपके ही बच्चे का कसूर है, आप जज बन गई। अब ये नहीं है कि ये तो मेरा लाडला है, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा, नहीं नहीं मेरा बच्चा, मेरा बच्चा ये बोल नहीं सकता, ये कर नहीं सकता, ये मार नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा, तो कुरान के मुताबिक फैसला करना है और बददियानत लोगों की तरफ से झगड़ा करने वाला नहीं बनना। खाइनीन, जो खयानत करते हैं, खयानत क्या होती है, बाज़ औक़ात किसी ने किसी को कहा ये मेरा राज है, उसको बताया, ये अमानत कहा और कहा कि इसको बताना नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल है, तो उसने क्या किया, उसने दूसरों को बता दिया, वो झगड़ा लेकर आता है आपके पास। तो अब हमारी तो आदत भी है कि औरत का पेट बहुत ही हल्का होता है, और हमारा मसला क्या होता है कि सबसे कीमती बात दूसरे को बताने के बाद जो अपने पेट में नहीं रख सके, दूसरे को कहते हैं ये तुम किसी को ना बताना। तो जब खुद नहीं हिफाजत कर सके तो दूसरे कैसे हिफाजत करेंगे ना, है ना। तो बहरहाल इसका ये नहीं मतलब कि कर नहीं सकते, दूसरों को हिफाजत करनी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अमीन थे, काफिर भी उनको इमानतदार कहते थे, सादिक, अमीन और सादिक के लकब से पुकारे जाते थे। इसी तरह खयानत और क्या हो सकती है कि किसी की चीज को बदल देना, बात को बदल देना, है ना, कोई अच्छी कपड़े को बदल देना, कपड़े के डिजाइन पसंद आ गया तो कपड़ा वैसा ही है लेकिन आपने डिजाइन अपने पास वो रख लिया, कोई भी चीज बदल ली, तो ये सारी चीजें खयानत है। खुद भी नहीं करनी, कोई कर रहा है तो उसका हमायती नहीं बनना, उसका कभी साथ नहीं देना, खा अपनी औलाद ही सगी क्यों ना हो, अपनी बेटी क्यों ना हो। ससुराल से बाज़ औक़ात बेटियां आती हैं, वहां की आके खूब कहानियां सुनाती हैं और पता चलता है कि बेटी जो है उसकी गलती है, तो हम कहते हैं कि तुमने और दो क्यों नहीं और सुनाई, और तुमने बहुत अच्छा किया, और फिर उसको हमें निकाल देना चाहिए घर से कि जाओ अपने घर ही जाओ, क्यों तुमने गलती की है, ताकि उसको अंदाजा हो कि मुझे ये काम गलत नहीं करना ना। तो गलती की कभी हमायत नहीं करनी चाहिए, अच्छे से उसको समझाना चाहिए। निकाल देने से मुराद ये नहीं कि बाहर उसको रुलने दें, उसको उसके घर पहुंचा कर आए जहां से वो आई हैं और उनको समझाएं कि ये बात ऐसे नहीं हो सकती, फिर उसको कभी वो आएगी नहीं ऐसी छोटी छोटी बातों पे रूठ कर और लड़कर, उसको पता चल जाएगा कि मेरे वालदैन जो हैं गलत बातों में मेरे हमायती नहीं है। वस्तग़फिरिल्लाह, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि इस्तग़फार कीजिए। तो यहाँ पर असल में ये बात नहीं है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इसे कहा जा रहा है, बल्कि तमाम लोगों से जिन जिन से ये गलती हुई, वो जो आप उस कबीले के लोग थे जो भी मुसलमान थे, तो असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह के दूसरे सब जो है वो भी इसे मुराद जो है वो लिए जा रहे हैं, ताकि सब अपनी इस मामले में जो है वो इस्लाह करें। तो क्या करें, अस्तगफार कीजिए आप। तो खिताब रसूलुल्लाह से है क्योंकि आप उम्मत के वकील थे, आप उम्मत के जज थे, लेकिन ये कि सारे वो लोग जो के मुनाफिकों की हमायत करते हैं, खयानतकार लोग जो हैं उनके हमायती बन जाते हैं, तो उन सबको भी अस्तगफार करना चाहिए। इन्नल्लाह काना गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि असल चीज क्या है कि बेवफाई और गद्दारी नहीं करनी चाहिए, ना बीवी शोहर से करे और ना ही मुनाफिक जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल से करे, ना ही एक इंसान दूसरे इंसान से करे। क्यों? क्योंकि इस तरह इंसान जो है वो मुजरिम बन जाता है, और जो खुद मुजरिम हो तो दूसरा इंसान भी मुजरिम की पुश्त पना ही ना करे, उसका साथ ना दे, ना खसीमा ना बने। तो ये आयात हमें क्या बताती हैं कि कुरान के मुताबिक फैसला करना चाहिए, हदीस के मुताबिक फैसला करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की बेहतरीन तौफीक अता करें।